الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الدرود بن محمد وعلى آله
پانچ ارب لوگوں کو خدا کا نام نہیں پتا، پانچ
अरब लोग अल्लाह का नाम नहीं जानते, जानते भी हैं तो ऐसे तरीके से जानते हैं तो कबूल नहीं होता। जो एक अरब जानते हैं उनमें से मुश्किल से 20% हैं जो इमामत को पहचानते हैं। आप और हम उन खुशनसीब लोगों में से कबूल का करार करते हैं जिन्होंने अमीर मोमिन की इमामत को पहचान लिया। अगर खुदा मुझे हिसाब ना चाहिए तो ताज्जुब, दुनिया की नियमतों का हिसाब लेता है, हमसे हिसाब नहीं लेगा कि तुम अली के जाने वाले थे, तुम्हें कैसा होना चाहिए था, तुम्हें क्या होना चाहिए था, हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना होगा और क्या करेंगे क़यामत के दिन। इस सवाल के मुकाबले में सफर हो सके चंद मुका सिलसिले में अर्ज करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने ये मुकादा की खिदमत अर्ज करूँ, हम लोग जो मुख्तलिफ जगहों से सफ़र करके किसी इलाके में पहुँचते हैं, अगर आपके इलाके में आए कितने दिन बोल देंगे, आज एक दिन बोलना है मामला खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर कई दफ़ा मौका मिलेगा, जैसे कोई शहर कराची के अंदर ही कोई जगह हो जहाँ पर कई दफ़ा बोलना हो, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहें, कुछ बातें बाद में कह देंगे, बाद में मौका है, एक महीने बाद आ जाएंगे, दो महीने बाद आ जाएंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमें तकरीबन अंदाज़ा होता है कि इस दफ़ा जो आए हैं पहली दफ़ा होगा, नहीं मालूम अगली दफ़ा आना नसीब होगा या नहीं होगा, नहीं मालूम, हकीकत ये कि नहीं मालूम। अब मसलन खुदा जानता है कि अगली दफ़ा कब गुजर हो, आना हो और आपकी खिदमत में हाजिर हो। तो हम ऐसे मौक़ों पर क्या करते हैं, हम ऐसे मौक़ों पर कोशिश कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कह के चले जाएं जिसको आप अपनी ज़िंदगी में करते रहें, आप जब भी करेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलता रहेगा। हम इस काम को इस तरह से करते हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कह कर जाएँ जो अगर 10 कहीं और किसी ने 2 पर भी अमल कर लिया उसको भी कोई ना कोई फायदा मिलेगा, कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। अब मेरी कोशिश ये होती है अपने साथ के तौर पर, अब 30-40 मिनट आपके सामने हम और होंगे, इस 30-40 मिनट में कुछ ऐसी बातें कह दूँ कि अगर किसी ने जरा सा भी अमल कर लिया, एक कदम एलिवेट की मोहम्मद में और आगे बढ़ जाए। इस तरीके से अच्छा हमने इसके तजर्बे बहुत किए हैं। आज से 5 साल पहले तक मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाता था, कभी ऐसा होता था कि हम किसी स्कूल में पढ़ाते थे तो ऊपर की क्लासों को पढ़ाते थे, कभी नीचे की क्लास में भी जाना पड़ता था। मसलन 9th क्लास को पढ़ाते थे, कभी कभी 5वीं को भी पढ़ाना पड़ जाता था, कोई पीरियड खाली हो जाता था उसमें जाकर पढ़ाने के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो इस तरह एक दफ़ा मुझे याद आता है कि मैं 6th क्लास में गया और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। अच्छा मैं वहाँ पर भी यही कोशिश करता था कि जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनको छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे दे दूँ कि अगर ज़िंदगी में अमल करे बेहतरी हो जाए। मैं 6th क्लास में पहुँचा, 40 मिनट का पीरियड था, थोड़ी देर में इधर उधर बातें की उनको बाद, उसके बाद मैंने उसे उन्हें कुछ पॉइंट्स बताए, मामला ख़त्म हो गया। फिर दोबारा 6th में नहीं गए, यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े होते होते 3 साल के बाद 9th क्लास में आ गए। जब 9th क्लास में आए तो पहले दिन में लोगों को, बच्चों को कुछ चीज़ें बताता था कि देखो ज़िंदगी में ऐसे करो बेहतर हो जाएगा। तो मैंने 9th क्लास में आने वाले बच्चों को पहले दिन ही बताया कि देखो बेटा पूरी कोशिश किया करो सोने से पहले वजू करो, सोने से पहले वजू करो। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, कहने लगा सर मैं पहले से कर रहा हूँ। मैंने ताज्जुब हुआ कि बहुत कम पाकिस्तान में कोई बच्चा ऐसा निकलेगा जो पहले से, जो हम बताने वाले हों पहले से कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा ये होता नहीं है, तो कैसे हुआ? कहने सर आप 3 साल पहले एक दफ़ा क्लास में आए थे ना, तो आपने कहा था कि वजू कर लिया करो, मैं उस वक्त से कर रहा हूँ। आप नहीं जानते आपकी बात पे कब कौन किस तरह अमल कर लेगा, तो हम नहीं जानते। आपने हमें नसीब फरमाए, मिसाल के तौर पर 2010 कब मैं दुनिया से रुख्सत होता हूँ, कब आप दुनिया से रुख्सत नहीं होता। महशर में शायद सब एक दूसरे को पहचानेंगे, महशर में पहचानेंगे। नहीं मालूम आपका कौन सा अमल मेरे काम आ जाए और मुझे नहीं मालूम मेरी कौन सी बात आपके काम आ जाए। इस दुआ के साथ खुदा हमें अहलेबैत की खिदमत की सआदत नसीब करे। दुरूद पे मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहतरी लाएं और इस नेमत के मुकाबले में खुदा ने हमें नसीब किए अरबों इंसानों को नसीब नहीं किए। जो मुसलमान है उनमें से करोड़ों को नसीब नहीं किए, कुछ ना कुछ हम अल्लाह को जरूर जवाब दे सकें। अब कहां से शुरू करें? जहां में से बास लोग शायद इस बात को एहसास नहीं कर पा रहे कि हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी है। ये दौर बहुत अजीब दौर है जिस दौर में और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दौर वाकई अजीब है। वैसे तो शायद मुझे और आपको एहसास ना हो सके, आप सुबह को घर से निकलेंगे काम काज के लिए, शाम को घर को वापस आएंगे, फिर दोबारा वही चक्कर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें, इस वक्त जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है वो बहुत अजीब है। जो हम 30-35 साल पहले सोच नहीं सकते थे वो इस वक्त अंजाम पा रहा है। सब इस वक्त हो रहा है। मैं आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ, मेरे लड़कपन की बात है, ज़ियाउल्लाह का दौर था, चेहलुम का दिन था, सईदुल शुहदा का चेहलुम था। टेलीविजन पर 9 बजे की खबरों में आखिरी खबर आती थी, आज सैयदना इमाम हुसैन का चेहलुम अकीदत और एहतराम से मनाया गया, खत्म। बस ये आलम था इतनी मुद्दत पहले। कोई खबर नहीं, कोई तस्करा नहीं, कोई तस्वीर नहीं, जुलूस की कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक जुमला, वो भी आखिरी जुमला खबर होगा, क्या? आज सैयदना इमाम हुसैन का चेहलुम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। आदमी का दिल कुड़ता था कि सैयदुल शुहदा की इतनी बड़ी कुर्बानी, करोड़ों लोग सैयदुल शुहदा का चेहलुम मना रहे हैं और कोई दुनिया को बताने वाला नहीं है, देखो हुसैन के नाम में कितने लोग जमा, कोई नहीं कहता। आज दुनिया में आलम क्या है, मैं टेलीविजन नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन आप यकीनन कुछ ना कुछ देखते हैं। जब चेहलुम आता है पूरी दुनिया का मीडिया करबला से लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है। क्यों लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं? उनको पता होता है आज के दिन, चेहलुम के दिन करबला की सरजमीन पर 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जमा होने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद, 3 दिन के अंदर जो वहां से लोग गुजरते हैं जरिए भारत के सामने से, उनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा होती है। और मैं इन चीजों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितना दुनिया ने कोशिश की सैयदुल शुहदा के नाम को दबाने की, कितना छुपाने की कोशिश की, आज आश्कार हो गया। आप जो काफिर तरीन मुल्कों में रह रहे हैं उनको भी सैयदुल शुहदा का नाम पता चल गया। और आप अहले बैत के मानने वालों की कामयाबियों को देखिए, ईरान की सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर, लुबनान के अंदर, अचानक जो आपको एहसास होता है कि दुनिया में बहुत कुछ अंजाम पा रहा है। सिर्फ एक मुश्किल है, शायद हमें नहीं मालूम कि हमारा किरदार क्या है। तरफ से अहलेबैत के नाम पर लोग कुछ ना कुछ अंजाम दे, सिर्फ एक मुश्किल है, हमें नहीं एहसास हो पा रहा। तो क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की आप और मैं अपना किरदार पहचान, ये पहचानने की कोशिश करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको क्या जिम्मेदारी दी है। कम से कम जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, कम से कम ये जिम्मेदारी दी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और ये जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। आज आदमी सतह पर जिम्मेदारी है, और पूरी दुनिया इस वक्त चाह रही है अहले बैत के नाम को सुने, इस नाम को समझने की कोशिश करें, उनकी तालीमात को समझने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे लोग एतराफ कर रहे हैं जिनको हमें और आप नहीं सोच पाएंगे। मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ आपको खबर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप शायद अपने इलाके के अंदर रहते हो, आपको एहसास ना हो कि अमरीका में शेर के नाम पर क्या हो रहा है, यूरोप में शेर के नाम पर क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये शायद आप ना एहसास कर पाए। लेकिन मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में इतनी तेजी से कोई दिन नहीं फैल रहा जितनी तेजी से शेर फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर। और सब अहले-ए-तहारत-ए-मुसलमान के उलूम को तलब कर रहे हैं कि इसके असरात क्या हैं, इसके नतायज क्या हैं, آپ کے اپنے کیا سمجھ داری بنتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کروں گا, اپنے ساتھ میں درود ملے گا محمد والے محمد. سب سے بڑی سچ داری یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, رکیں نہیں اپنی جگہ کے اوپر. مثلا فرض کیجیے میں طالب علم ہوں, 36 سال پہلے دینی طالب علم بنا, 36 سال پہلے ایک جوان کالج سے نکلا ہوا, اسے کیا آتا ہوں. 36 سال میں نے کم سے کم ایک بات سیکھی ہے, انسان کو کسی صورت میں کام نہیں چھوڑنا چاہیے, کچھ نہ کچھ انجام دیتے رہنا چاہیے. کیا مطلب کچھ نہ کچھ انجام دیتے رہیں؟ اپنی بہتری کے لیے, اہل بیت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام ہی صحیح, کچھ نہ کچھ کرتے رہیے. مثلاً کیا کرنا ہے, مثلاً فرض فرمائیں خدا نہ کرے یہاں پہ کوئی جوان ایسا ہو جو کہے کہ بھائی میں ماننے والا اہل بیت کا ہوں, ان کا جملہ بھی مجھے پتا ہے کہ جو نماز کو کم سمجھے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی, میں نہیں پڑھ پاؤں, کون سے کہوں گا کم از کم کام نہیں کرو, پڑھنا شروع کرو. جو پہلے سے پڑھ رہا ہے اس کو کیا کہوں, اسے کہوں گا کہ تم اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو جس طرح اہل بیت نے چاہا, تھوڑا سا بہتر کر دوں. آپ اور میں خود بخود جانتے ہوں کا کردار بہت بلند ہے, ہم اور آپ اپنے بچپن سے پہچانتے ہیں ان کا کردار بلند تھا, ان کے بلند کردار سے کوئی ایک چیز لے کر اپنی زندگی میں عمل میں لانا شروع کر دیں. مثلا ہمارا جانتے ہیں امیر مومنین سخی تھے, بخشش کرتے تھے. فرض کریں کوئی کہ میں بخشش نہیں کر سکتا, میرے پاس نہیں ہے تاکہ میں بخشش کروں, بخشش نہیں کر سکتے, دہندگی تو کر سکتے ہو, دہندگی کرو, دوسروں کے لیے دہندگی بن جاؤ. ممکن ہے کوئی یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کہیں اور جاؤں کسی کے کام آؤں, اتنا کر سکتے ہو دوسروں کو دعا دے سکو, دعا دے. کچھ نہ کچھ کہیں میری اولاد کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی رہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں چند قدم پڑھتے رہے. اچھا اگر صرف اتنا کرتے رہے کہ ان سے یہ کہتے رہے کہ مولا آپ کے نام پر جد و جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو وہ کسی کی کوشش کو نظر انداز نہیں کرتے, وہ آپ تھامنے والے ہیں. اتنا ہی احساس کر دیں کہ ہمارے نام پر کوئی ممکن ہمارا بندہ مومن کوشش کر رہا ہے, نہیں معلوم ان کی طرف سے کتنی برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی. تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنی فکر سے کچھ نہ کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں جوش اور جذبے کے ساتھ کاروائی کرتے رہیں. چند کام ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ انجام دے سکتے ہیں. میں معمولی بات سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, وہ کہیں بھائی آپ کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی مشکلات کیا, ہمیں روزگار کا مسئلہ ہے, ہمیں بیماری کا مسئلہ ہے, ہمیں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جن چیزوں کو حل کرنے کے لیے انہوں نے راستہ بتایا ہے, ہم اس راستے پہ عمل نہیں کر رہے, اس مصیبت میں پڑے ہوئے. مثلاً میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل عرض کروں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, ہم لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جو اس کا بنی ہے اور اس کا معاملہ ہے, ہم لوگ روزگار کی مشکل میں پھنس گئے. ہر ایک آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل بنی ہوئی ہے, جو نوکری پر ہے اس کو نوکری کا مسئلہ ہے, جو نوکری میں نہیں ہے وہ نوکری تلاش کر رہا ہے, جو کاروبار کر رہا ہے وہ اس کاروبار میں پھنسا ہوا ہے, اس کے پاس کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے. ہر ایک آدمی اس روزگار اور معاش کے مسئلے کے اندر کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے. اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا, وہ جو زمین و زمان کے مالک ہیں انہوں نے آپ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں بتایا, انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوگا, یقیناً بتایا ہوگا, کیا بتایا؟ میں اپنی مشکل کو کیسے حل کروں؟ زندگی میں جو آپ کی مشکلات ہیں ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دیے ہوئے حل کے ذریعے حل کریں, کیوں کسی اور دروازے پہ جائیں؟ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہو جو علاقے کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو اور آپ بیماری کا علاج کرانے کے لیے کسی چھوٹے موٹے آدمی کے پاس پہنچ جائیں, آپ کو تو خود ڈاکٹر ایک معالج آپ کے گھر میں آئے, آپ کیوں جائیں؟ میں اور آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام زمین و زمان کے مالک ہیں, وہ جو زمین و زمان کے مالک ہیں تو میری مشکل حل نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو سکتی ہے. پھر ایک کام کرنا شروع کرو, ان سے پوچھو مشکل حل ہوگی کیسے.
بالکل اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرو، چاہے میں آپ کی اس مشکل کی خاطر، روزگار کے مسائل کی خاطر، رزق کے مسائل کی خاطر، اسی کے اوپر تھوڑی دیر بات کر لیتا ہوں. درود بھیجو محمد والے محمد. وہ اس مشکل کو کیسے حل کرتے تھے، وہ اس مشکل کا حل کیا بتاتے تھے؟ پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ انجام پا رہا ہے وہ یہ ظاہر ہے جو کچھ انجام پا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اس ظاہر کے پیچھے بہت کچھ ہوگا جو انجام پا رہا ہوگا. مثلا ایک سادہ سی بات ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے نہیں؟ نظر آ رہا. کتنے فرشتے ہوں گے یہاں پر؟ آپ کے علاوہ فرشتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے تو ہیں نا، کرامن کاتبین، دائیں بائیں لکھنے والے. تو جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں اس کی دگنی تعداد کے فرشتے یہاں پر ہوں گے. نہیں معلوم اللہ کے کتنے فرشتے یہاں پر ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم. ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. رزق کا معاملہ بھی ایسے ہی، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نہیں، اس سے زیادہ بہت کچھ ہے. اللہ کا دین بہت وسیع ہے، ہم لوگ ان برکتوں کو احساس نہیں کر پا رہے. مثلا ایک سادہ سا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اپنے رزق میں بہتری چاہتے ہیں، سادہ سا ایک نسخہ جو علماء بتاتے ہیں، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک مت سوئیے. بہت سادہ نسخہ، فجر کی اذان ہو اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک مت سوئیے، اس دوران جاگتے رہیں. اس دوران جاگیں اور خدا ممتاز سے اپنے رزق کو مانگیں. رزق بڑھانے کا بہت آسان طریقہ ہے. اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ جب خدا کہتا ہے اس وقت میں جاگو میں رزق دوں گا، اس وقت سو جاتے ہیں اور دن میں 10-10 گھنٹے محنت کر کے خدا سے کہتے ہیں خدا رزق تو نہیں دیتا. بندہ خدا جب اس کی کھڑکی کھلی تھی تو تمہارے گھر کے دروازے بند تھے، پھر جب تم دروازہ کھول کے نکلے تو اس کی کھڑکی بند ہو چکی ہے. کیوں اس وقت نہیں آئے جب اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی؟ اٹھو مانگو خدا دیتا، اس نے نظام ایسے بنایا. اچھا، اب میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کے نظام پر عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے حل ہو جائے گا. نہیں حل ہوگا، یہ خدا ہے، وہ مالک بول ہے، یہ حل نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کی سمجھ میں کچھ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں آتی. مثلا ایسے عرض کر رہا ہوں آپ کی فہم و شعور کو اور تھوڑا سا آگے بڑھانے کی خاطر، ہم اور آپ اس مسجد کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ سیمنٹ لگا ہوا ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، ٹائلز لگے ہوئے ہیں اس میں، اور باقی سیرے سریا بجری عمارت یہی سب کچھ ہے. آپ کے خیال میں یہ مسجد بے جان ہے یا جاندار ہے؟ ہم کہتے ہیں بے جان، سیمنٹ سریا یہ تھوڑی جاندار. ہمارے پاس روایت موجود ہے قیامت کے دن مسجد شکوا کرے گی کہ اس میں نمازی نہیں آتے تھے. اگر یہ بے جان ہے تو اس کو کیسے پتا چلا کہ نمازی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر یہ واقعی بے جان ہے تو یہ شکوا کیسے کرے گی؟ اس کا مطلب ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے جان ہے، یہ بے جان نہیں ہے، یہ جاندار ہے. اور میں سب اس روایت میں تین چیزیں لکھی ہیں کہ قیامت کے دن شکوا کریں گی. لکھا ہے مسجد شکوا کرے گی کہ یہ نمازی ہمارے پاس نہیں آتے تھے. ایک لکھا ہے قرآن کریم کا نسخہ خدا کے حضور شکوا کرے گا کہ لوگوں نے مجھے گھر میں رکھا ہوا تھا، آپ پڑھتے نہیں تھے. تیسرا، اس کو کہنا عجیب سا لگتا ہے، عالم دین شکوا کرے گا کہ میرے پاس علم تھا، میں دینا چاہتا تھا، لوگ لینے کو تیار نہیں. یہ خدا کا نظام ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے بس وہ اختتام ہے. نہیں، وہ اختتام نہیں ہے، پوری دنیا بسی ہوئی ہے. اس کے اندر جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اب مجھے آپ کی زندگی آسان ہوتی. بس رزق کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ کیا پوائنٹ تھا؟ فجر کی نماز کے اذان کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک جاگ جائیے. اس جاگنے کے دوران خدا کے مطابق سے رزق طلب کرنا شروع کر دیں. ایک لوگ آتے ہیں رزق بڑھانے کے لیے اور کہتا ہوں کہ خدمت میں درود بھیجے گا محمد والے محمد. کوشش کریں ہر روز کسی بھی طریقے سے کسی ایک بندے کو خوش کرنا, بس کسی ایک انسان کو اپنے سے خوش کرنا. اچھا ممکن آپ کہیں میں کیسے خوش کر سکتا ہوں, پہلے ہی رزق کم ہے, پیسہ دوں گا تو خوش ہوگا, ضروری ہے کہ پیسہ دینے سے خوش ہوگا؟ کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے پیسہ دینے سے ہی کوئی خوش ہوتا ہے؟ نہیں, بعض وقت صرف اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے, اس بات سے خوش ہوتا ہے. ہم اور آپ چونکہ دنیا میں کسی اور طرح دیکھتے ہیں, مثلاً اتنا ہی کر لیں آپ اپنے دوستوں سے, جاننے والوں سے, اللہ کی خاطر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی خاطر اچھا پیش آنا شروع کر دیں, ان کے دلوں کو خوش کر دیں, خدا تعالیٰ کی خوشیوں کو بڑھا دے. آپ کو باتیں احساس کر رہے ہیں, زمانے کے اندر ہم لوگوں کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ایک بقرعید آتی تھی لوگ پتہ نہیں کتنی خوشیاں مناتے تھے, دیکھا آپ نے عید بقرعید کی خوشیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, پتہ نہیں چلتا کب عید آئی کب عید چلی گئی, ابھی عید آئی تھی احساس بھی نہیں ہوتا کب آئی اور کب چلی گئی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے خوشیاں دینا ختم کر دی ہیں, یہ خوشیاں دینے سے بڑھ گئی ہیں. اب دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیجیے, دوسروں کا احترام کرنا شروع کر دیجیے, آپ کی زندگی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. جتنا اس کا پرینام دیتے رہیں گے آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی. بس کلام کا تو یہ تھا کہ پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے اہل بیت کے نام, آپ کو اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی. جتنا جدوجہد کریں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر محنت کریں گے, ہماری اور آپ کی زندگی بہتری آئے گی. ایک چھوٹا سا کام آپ کے اندر درس کیا, فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک جاننے کی کوشش کر لیجیے, دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر کیا بہتری آتی ہے. کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. تھوڑا سا تاریخ میں جائزہ لیجیے, اہل بیت کے چاہنے والے ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ کو خدا زیارت نصیب کرے ان شاء اللہ. جیسے کہ ابھی ہمارے برادر والا امام کے نام پر قصیدہ پڑھ رہے تھے, ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. دیکھیے ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی تھیں, وہ لوگ کیا کرتے تھے. اچھا ہم لوگ بات بات سمجھتے ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے تھے, جیسے ہم لوگ کیا مدرسے ہوتے ہیں, شاید ہی مدرسوں میں پڑھتے تھے سارے, نہیں لوگ مدرسوں میں نہیں پڑھتے تھے. اس زمانے میں ایسا رسم و رواج نہیں تھا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, مثلا عرض کر رہا ہوں چھٹے امام اور پانچویں امام کے بڑے شاگردوں میں سے علی ابن مہزیار نام کر کے ایک شاگرد, ایک یونیورسٹی میں عبد الرحمان نام کر کے شاگرد, امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کپڑے بیچنے والے ہیں, ایسا امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد موچی بھی ہے, موچی ہے سادہ ترین موچی. اب انسان تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک آدمی کپڑا بیچنے والا ہے اہل بیت کا راوی ہے, جوتے ڈالنے والا ہے اہل بیت کا راوی ہے, سادہ ترین کام دنیا میں کرنے والے ہیں. اب آپ کو سوچ لیں, آپ کو سب کو پتا ہے میسن تمار کیا کرتے تھے, کھجور بیچتے تھے. تمار نام اسی لیے پڑھ رہا تھا, ہم لوگ کہتے ہیں کھجور کو تمار, کھجور بیچنے والا میسن تمار, کھجور بیچتے تھے. کوئی کسان تھا, کوئی کھجور بیچتا تھا, کوئی کپڑے بیچ رہا ہے, کوئی مثلا میں نے عرض کیا جوتے کام کر, اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو صاحبان ثروت تھے, مثلا عبداللہ بن عباس کا گھرانہ بہت پیسے والا گھرانہ تھا, صاحبان ثروت بھی لوگ تھے, لیکن عام زندگی گزارنے والے بہت تھے. عام زندگی گزارنے والے کیا کرتے تھے, ان کو مقام کیسے ملتے تھے؟ اچھا ہم لوگ کیا کیا سمجھا جاتا ہے, مثلا عرض کیجیے کہ یہاں پہ کوئی ریڑا لگانے والا بیٹھا ہو, میں اس سے کہوں کہ تم اہل بیت کے اصحاب میں شامل ہو سکتے ہو, ممکن ہے مجھ سے ہنسے, کہتا نہیں ہو سکتا. میں پوچھوں کیوں نہیں ہو سکتا, وہ کہتا میں مدرسے نہیں گیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا. ان سب کی ضرورت بھی نہیں ہے, کریں تو اچھا ہے, معاشرے میں ضرورت تو ہے, لیکن کوئی یہ کہے مجھے اہل بیت کا قرب لینے کے لیے پہلے 15 سال پڑھنا پڑے گا, نہیں ضروری نہیں. پھر کیا کرنا ہوگا, بہت سادہ سادہ سا کام کر جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں, یہ ان کو پسند ہے, اس کو کرنا شروع کر دیں. اور جو آپ کا ذہن کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہوگا اسے چھوڑ دو. واقعہ اس کا کام یہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا, ایک دفعہ مجلس کے بعد ایک جگہ نظر کے لیے بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آیا میرے پاس, बिल्कुल जैसे हम लोग दस्तखान में बैठने का मेरे बराबर में आया, पूरा बैठा भी नहीं, जैसे बस उठने के लिए तैयार। मेरे पास आकर कहना, मौलाना साहब एक सवाल है, किसी ने पूछा है। मैं कहा बैठ जाओ। कहना नहीं, मैं जल्दी जाऊँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है, एक सवाल पूछा है, आप बस जवाब दो, मैं ड्यूटी पे जाऊँ। मैं कहा बंदा खुदा, जल्दी मत करो, थोड़ा सा बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ जल्दी हूँ। मैंने अच्छा सवाल करो। कहना था मौलाना साहब, ये जो रिवायत है, जो जमाने के इमाम की मारिफत हासिल ना करे, ना चाहे, वो जाहिलियत की मौत मरा है। इसमें मारिफत इमाम का मतलब क्या है? अब देख रहे हो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बस खड़े खड़े मुझे बताओ, मैं जा रहा हूं। और सवाल कितना बड़ा किया है, सवाल किया है मारिफत इमाम किसे कहते हैं? पहले मैंने सोचा इससे कहूँ कि बंदा खुदा मेरा टेलीफोन नंबर दे लो, अभी जाओ कल फोन कर देना। फिर मैंने सोचा कि ऐसे भेजना अच्छा नहीं, एक जुमला तो बोल दो। मैंने खुदा से कहा, खुदा कोई एक जुमला बता दे, इसको बोल दो, मैं कहाँ से लाऊं। अचानक दिमाग में एक बात आई, वो मैंने उसको कह दी। बाद में मैंने गौर किया कि इससे अच्छा जुमला मैं नहीं कह सकता था, सोचता भी तो नहीं कह सकता। फिर मैंने उस जुमले पर खुद अमल करने की कोशिश की, खुद अमल करने की कोशिश की। फिर उस जुमले को बहुत सारे लोगों को औरों को सिखाया, आज तक समझ में आया ये जुमला बहुत जबरदस्त जुमला है। और ये छोटा सा जुमला जिंदगी बदल सकता है। क्या जुमला है? सादा सी बात। मैंने उससे कहा, भाई मारिफत इमाम ये है कि जो इमाम पसंद करें वो तुम पसंद करो, जो वो ना पसंद करें तुम ना पसंद करो। ये मारिफत इमाम। सादा सा काम, अपने जहन से पूछो ये इमाम को पसंद है, उसे पसंद कर लो। अपने जहन से पूछो ये इमाम को पसंद नहीं है, उसे छोड़ो। मिसाल दूं आपकी खिदमत, पसंद फर्ज फरमाइए, आज सुबह कल सुबह आप उठेंगे कितने बजे, उठना चाहते हैं रूटीन में कितने बजे उठते हैं? अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछ लें, इमाम कितने बजे उठवाना चाहते हैं, वो कितने बजे चाहते हैं? कितने बजे उठूं बहुत खुश होंगे, कितने बजे उठूं थोड़ा खुश होंगे, कितने बजे उठूं तो नाराज होंगे। कम से कम काम इतना करो, उस कल्ब मुकद्दस को नाराज मत करो। कम से कम काम इतना करो, नाराज मत करो। तो जो आपको समझ में आता है कि नहीं ये काम किया तो इसमें तो नाराज होंगे, वो आप छोड़ दो। जो आपको समझ में आए इस काम को इस तरह से कर लूं तो खुश होंगे, वो आप अंजाम दे दो। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जब भी कोई काम करने लगे बार बार अपने आपसे यही सवाल करते रहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप जाए उसको काफी पढ़ें, आप नहीं पढ़ेंगे। आपसे मैं कहूँ किताबें पढ़ें, आप किताबें नहीं पढ़ेंगे। मुझे चंद मिनट में कुछ ऐसी बात कहनी है जो आपके काम आ जाए। एक बात जो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, काश आप इसको सुन लें, अमल करना शुरू कर दें, आपके काम आ जाए। अपनी जिंदगी में सिर्फ ये पूछ लिया करें, इससे आप खुश होंगे। मसलन मैं बिल्कुल आम रोजमर्रा की मिसाल अर्ज करता हूँ। फर्ज करें दो भाइयों का झगड़ा हो गया, हो जाता है हमारे माशरे के अंदर भाइयों का दोस्तों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो गया, नाराज हुए बैठे हैं, नाराज हो गए तो ठीक है, नाराज हो गए। अपने आप से एक सवाल पूछे, ये क्या हम दो भाई झगड़े बैठे हैं इससे इमाम खुश होंगे? खुश होंगे नहीं खुश होंगे, फौरन खत्म करो, फौरन खत्म करो। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था, देखा उसमें दो अहले बैत के मानने वाले, एक इमाम बहुत मशहूर आदमी बाजार से गुजर रहे थे, देखा दो मानने वाले झगड़ा कर रहे हैं, नजदीक आए, पूछा क्या मामला है? कहा 400 दिरहम तलब है मेरी इसके ऊपर। उसने कहा नहीं, इसकी मेरे ऊपर तलब नहीं है। दोनों का झगड़ा इसी बात पर था, एक कहता है इसने 400 दिरहम देने, दूसरे कहता नहीं देना है। ये जो तीसरा आदमी था रावी का, ये पहुंचा, इसने कहा कि क्या मामला इसके अलावा कुछ और है? कह नहीं, मामला इसके अलावा कुछ और नहीं, बस झगड़ा इस पैसे का। कहा अगर मैं पैसा दे दूं झगड़ा खत्म हो जाएगा? मतलब पैसे दे झगड़ा ही खत्म हो जाएगा? तो इसने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम लोग झगड़े को खत्म करो। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि झगड़ा तो खत्म हो जाएगा तो अपना पैसा क्यों दे रहे हो, झगड़ा हम दोनों का है, 400 दिरहम इसने देने नहीं दे रहा है, तुम क्यों दे रहे हो। कहने लगा मुझे इमाम ने पैसे दिए हैं कि अगर हमारे दो मानने वालों को लड़ते देखो तो पैसा दे के झगड़ा का खत्म करवा दो, उनको पसंद नहीं है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो मानने वाले झगड़ते हुए नजर आए, वो भी दुनिया के पैसे के ऊपर। तो आप अपनी जिंदगी में जगह जगह ये सवाल कर सकते हैं, ये इमाम पसंद है, पसंद है कर लीजिए, नहीं पसंद मत कर। अच्छा मैं इसकी और साधन चाह रहा हूँ, आप अपने घर से निकल जाए अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, हमारा और आपका इम्तिहान क्या होगा, क्या इम्तिहान हुआ हमारा, हमने पे क्या इम्तिहान दिया है। तो आप अपने अजीब बात देखेंगे, वो लोग इम्तिहान देकर आगे बढ़ते थे, हम में इम्तिहान नहीं दे पा रहे। अच्छा वो कम अज कम इम्तिहान क्या देते थे, तालीमात पे अमल करते थे, कम अज कम इम्तिहान उनका ये था, उनकी तालीमात पे अमल करते थे, यही इम्तिहान हमारा और आपका भी है। मैं एक बार सोचता था कि जिस वक्त बदर का मार्का हो रहा था, जंगे बदर हो रही थी, सबको पता था कि ये जंगे बदर कितनी बड़ी जंग है, सबको पता नहीं था। जो लोग करबला के मार्के को देख रहे थे सबको नहीं पता था करबला की जंग कितनी बड़ी जंग है। एक आदमी वहां पहुंचा, मौलाना ने फरमाया हमारा साथ दो, कहने का मैं आपको शमशीर दूंगा, मैं आपको घोड़ा दूंगा। इमाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी शमशीर और घोड़े की जरूरत नहीं है, अगर दे सकते हो तो जान देने के लिए हमारे साथ आओ। कहने मैं जान नहीं दे सकता, चला गया वहां से। जब चला गया तो सारी जिंदगी अफसोस करता रहा कि मैंने सैयद शहदा के नाम पर जान क्यों नहीं दी। अच्छा उस वक्त जान क्यों नहीं दी, सारी जिंदगी तो अफसोस कर रहा था, उस वक्त क्यों नहीं जान दी, इसको नहीं पता था करबला का मार्का कितना बड़ा मार्का है, करबला की जंग कितनी बड़ी जंग है। बातों का हम लोग के साथ ऐसे होता है, हम अगर कोई काम करते हैं बहुत बड़ा मकाम मिल सकता है, सिर्फ एक मुश्किल है, हमें पता नहीं होता कि ये वो काम है जो हमें करना है। और मैं समझता हूँ हम लोग के साथ यही हो रहा है, हम और आप यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, हम और आप ये समझ रहे हैं हमारा इम्तिहान होगा, कोई जंग होगी, उस जंग के अंदर एक तरफ यजीद जैसा कोई होगा, दूसरी तरफ सैयद शहदा पुकार रहे होंगे, फिर मैं सैयद शहदा का साथ दूंगा। इतना खुश नसीब शायद हम नहीं होंगे कि करबला का मैदान हमारे लिए बनेगा। तो हमारी करवाला क्या है, हमारा इम्तिहान किस बात के ऊपर है, ये जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं इस पर इम्तिहान हो रहा है। हम इसको इम्तिहान नहीं समझते, हम समझते हैं ये तो एक सादा सी जिंदगी जो मैं और आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन पर गुजार रहे हैं, ये हमारा इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। आप कब जाएंगे करवाला की सरजमीन पे, कब ऐसा होगा, और वो अगर हुआ भी तो उस वक्त होगा जब इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। हम सब आरजू करते हैं, हम सब लोग दुआ करते हैं इमाम की तशरीफ आवरी के लिए कि खुदा हमें वो दिन देखना नसीब करे जब इमाम तशरीफ लाए, खुदा हम उस जंग के अंदर इमाम का साथ दें जब इमाम तशरीफ लाए। एक बात अपने आपसे पूछिएगा, कौन से लोग इमाम का साथ देंगे, उस दिन तय होगा कि ये इम्तिहान का इमाम का साथ देगा या नहीं देगा। मतलब फर्ज कीजिए मैं भी जिंदगी गुजारता रहा, आप भी जिंदगी गुजारते रहे, आपने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, मैंने जिंदगी अच्छी नहीं गुजारी, अचानक इमाम तशरीफ ला गए, अचानक मैंने इमाम का साथ दे दिया, ऐसे होगा नहीं। उस दिन जो इमाम का साथ देने वाले होंगे वो इस जिंदगी के इनाम में इमाम का साथ दे रहे होंगे, ये होगा। ये जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं इस पर तय होगा मेरी और आपकी जिंदगी पर कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे ये साथ देगा या नहीं देगा। हमारे पास दुआ अहद जैसी दुआ है, दुआ अहद में क्या लिखा है, खुदा जब मैं मर जाऊं इमाम तशरीफ लाए, अगर इमाम तशरीफ ले आए मैं जिंदा हूं तो मैं उनका साथ दूंगा, अगर मैं मर जाऊं इमाम तशरीफ लाए तो खुदा मुझे खबर से उठा दे ताकि मैं इमाम की नुसरत करूं। किसको खुदा खबर से उठाए, जिसने जिंदगी भर इमाम की परवाह ना की वो खबर से उठा दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इस वक्त ये जो मैं आप जिंदगी गुजार रहे हैं इसके जरिए से तय होगा कि हम इमाम की नुसरत करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब क्या करना चाहिए आपको और हमें, अपनी जिंदगी में गौर कर लीजिए, नुसरत करने वालों की जिंदगी है तो आप अपने इमाम का साथ दे देंगे, अगर नुसरत करने वालों की जिंदगी नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है ये सब कुछ? और खुदा ना करे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो सवाल है जो हम लोगों ने सोचा ही नहीं है। ये मामूलन वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमने गौर नहीं किया। मसलन आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी कैफियत क्या है। आपने अब तक जितनी मजलिसें सुनी होंगी, जितनी ज़ाकिरी खबरें सुनी होंगी, बहुत कम किसी ने आपसे ये कहा होगा कि ऐज़ाने मोहतरम आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। सबने आपके साथ एक जुमला कहा होगा, वो ये कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप आइए यहाँ पे तशरीफ लाए, उठ के चले जाए, मामला खत्म हो गया। कैसे खत्म हो सकता है? हजरत सलमान फारसी तो पूरी जिंदगी अपने गुजारे मोहब्बत अहले बैत में इम्तिहान देते देते हमको इम्तिहान ना दें। हजरत अबू ज़र की तो पूरी जिंदगी इम्तिहान देते हुए गुजर जाए, हमारा कोई इम्तिहान नहीं होना। हबीब इब्ने मज़ाहिर बचपन से लेकर उस बुढ़ापे के आलम तक और शहादत तक सैयदुल शुहदा के शागिर, उनके गुलाम बने रहे, इम्तिहान देते रहे, उसके बाद किसी मकाम पर पहुंचे, और हम समझ लें हम नहीं। कैसे हो सकता है? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके अमाम कबूल फरमाएं, एक बार फिर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चे को भी समझाने की कोशिश करूँ तो बच्चा भी थक जाएगा, यकीन आप भी थक गए हो कि बार बार कभी लाइट आएगी जाएगी, कभी आवाज रुकेगी दोबारा आएगी। आपने अपने बार बार इमाम की जरूरत का नाम दिया, उस खाते मैंने आपकी खिदमत में चंद जुमला दर्ज किया। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जबान पर, हमारी फिक्र में आरजू के तौर पर हैं, इस पर सोचने का मौका नहीं मिला है ये आरजू पूरी कैसे होगी, इसका मौका नहीं मिला। मतलब अगर यहाँ पर कोई अभी कह रहा था कि जहूर इमाम दवाना की तकजीब के लिए दुरूद भेजें, आपने दुरूद भेज दिया भाई, कोई आपसे कहे आप चाहते हैं क्या? मैंने आपने कि बात चीज़ें हमारी आरजू हैं, हमें सोचने का मौका नहीं मिला है कि आरजू पूरी कैसे होगी। आरजू इमाम की नुसरत करें, ये मालूम नुसरत होगी कैसे? आरजू है इमाम का साथ दें, ये नहीं मालूम साथ देना कैसे? अब जो हम तशरीफ फरमा है सिवाय होंगे अहले बैत के, किसी और खाते नहीं आए हैं। आप दिन भर मजबूर रहे होंगे, काम काज किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाहिर इमाम की मोहब्बत में आए हैं। आप इमाम की मोहब्बत के लिए वक्त भी देना चाह रहे हैं, इमाम की मोहब्बत के लिए आप ही के अजदाद ने, हमारे और आपके अजदाद ने जाने भी दी है, अभी भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाने देनी पड़ती हैं। सबको मालूम था ज़ाती तौर पर कराची में बंद धमाका होगा आशूर के दिन, जेहलूम में सबको पता था फिर धमाका होगा, लोग फिर भी आए। लाहौर के अंदर बंद धमाका हुआ, लोगों को पता था बंद धमाके का सिलसिला चल रहा है, फिर भी आए। कोयटा के अंदर बंद धमाका हुआ, अभी भी आएंगे लोग। बार बार कुर्बानियाँ दी हैं, बार बार कुर्बानी दी, ये नहीं कि जज्बा नहीं है, जज्बा बहुत ज़्यादा है। अगर कुर्बानियाँ ना देते तो मैं और आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। सिर्फ एक मुश्किल बाकी है जो हमें बता सके कि इसके साथ हमें करना क्या है। ये पता चल गया कुर्बानी देनी है, कुर्बानी दे रहे हैं, जो कौन बहुत अच्छी है। जो लोग हमसे कहते हैं पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी वैसे हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम। दुनिया में कहीं अहले बैत अथार के चाहने वालों में इतने जज्बात नहीं है जितने हमारे मुल्क के अहले बैत के चाहने वालों में। कितने जितने जान देने वाले यहाँ मौजूद हैं, मैं यकीन से कह रहा हूँ दूसरी जगहों पर इतने मौजूद हैं, यहाँ बहुत मौजूद हैं जान देने वाले। सिर्फ एक मुश्किल है, ये नहीं पता जान देने के साथ करना क्या है, ये वाजे नहीं हुआ, अच्छी तरह नहीं समझ में आया, चूंकि नहीं समझ में आया नहीं कर रहा। अब आप अपने आप से पूछने की कोशिश कर लीजिए, میں جتنا بھی آپ کی خدمت ڈانس کروں گا ممکن ہے آپ کو میرا لہجہ پسند آئے، ممکن میرا انداز پسند آئے، ممکن آپ کسی اور طرح سوچ رہے ہوں، تو میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف آپ سے کہتا ہوں جو آپ کا ذہن کہے کہ مجھے اہل بیت کی خاطر یہ کرنا چاہیے وہ آپ کر لو. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کی خاطر میری زبان اچھی ہونی چاہیے، میری زبان میں غلط ملوث نہیں ہونا چاہیے، اپنی زبان کو صحیح کرنا. آپ سمجھتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے کا گھر گندا نہیں ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرا کرنا. آپ سمجھتے ہیں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو عبادت گزار ہونا چاہیے، ان کے اندر عبادتیں ہونی چاہیے، آپ عبادت کریں. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آئے، عبید اللہ بن زیاد نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لاؤ. اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ اے عبید اللہ میں مسلم بن عقیل کو نہیں جانتا، مسلم بن عقیل مدینہ میں رہتے ہیں، میں کوفہ والا ہوں، میں نے کبھی مسلم بن عقیل کو نہیں دیکھا. عبید اللہ بن زیاد ایک زمانے میں اس کا باپ امیر المومنین کے ساتھ تھا، یہ اور اس کا باپ اہل بیت کے ماننے والوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اہل بیت کی تعلیمات سے بھی واقف تھے، شیطان سے بد ہو گئے تھے بعد میں. کہنے لگا تم مسجد میں جاؤ، جو شروع سے آخر تک مسجد میں بیٹھے اور پورے شوق سے عبادت کرے وہ مسلم بن عقیل ہوگا، وہ مسلم بن عقیل ہوگا. یہ اہل بیت کی پہچان تھی، پورے شوق سے عبادت کریں گے. تم ان کو عبادتیں کرتے دیکھو گے تمہیں لگے گا ان کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی اچھا کام نہیں ہے، سمجھ جاؤ یہ اہل بیت کے چاہنے والے. یہ ہمارے رب کی پہچان ہونی چاہیے تھی. میں بعض اوقات سوچتا ہوں ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں، کاش ایسا ہو پاکستان میں چپے چپے میں پرچم اہل بیت لہرا. آرزو کرتے ہیں، ان مشکلات کو دیکھتے ہیں، یہاں بہت دھماکہ، وہاں مشکلات، وہاں عذاب، وہاں مخالفت، ان تمام کو دیکھ کر انسان ذہن میں سوچتا ہے کاش ایسا ہو پاکستان کے چپے چپے پہ پرچم اہل بیت لہرا. ان شاء اللہ خدا مجھے اور آپ کو دن دیکھنا نصیب کرے کیسے لہرائے گا. سادہ سا ایک کام کر لیجیے، اپنے اندر کچھ چیزیں ایسی بنا لیجیے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں اگر ان کے ماننے والے ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے، خود بہت اچھا ہو جائے. اپنے اندر کو ایسی صفت لے آئیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں ان کا دین کیسا ہے، خود بہت آئیں گے. چھوٹی سی بات ہے، ایک دفعہ میں نہیں تھا افریقہ میں شاید، وہاں پر ایک جگہ پہ ایک آدمی نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ جنوبی افریقہ میں، ملک ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ، کہنے لگا جنوبی افریقہ میں عالم یہ تھا عیسائیوں کی عدالت میں اگر کوئی مسلمان کوئی گواہی دیتا تھا ایک گواہی پہ فیصلہ کر لیتے تھے، ایک گواہی پہ، چاہے سامنے کوئی اور گواہ بھی موجود ہوتا تھا، عدالت بھی عیسائیوں کی ہوتی تھی، پھر بھی ایک گواہ پر فیصلہ کر لیتے تھے. کیوں؟ وہاں مشہور تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، ہم اور آپ کے لیے مشہور ہو جائے، اتنا ہم اپنے کردار پہ محنت کریں کہ چھٹے امام کا ماننے والا کاروبار میں بے وفائی نہیں کرتا، مکاری نہیں کرتا. درود محمد والا اپنی ذات کے اندر کچھ چیزیں بہتر کر لیجیے، आपको पटक पहनना शुरू हो जाए, आप नए व्यक्ति को बदलना मान जाएंगे, खुद ब खुद आपके जरिए से गीत गाना शुरू हो जाएगा। बस हम लोग कभी कभी जाते हैं लोगों से कहते हैं आप दीन की तबलीग कैसे करते हैं, हम दीन की तबलीग नहीं कर सकते, आप दीन की तबलीग करेंगे। कैसे दीन की तबलीग करेंगे? अपने अमल के जरिए से। काश ऐसा हो जाए, मैं तो एक जगह पे गया सुबड़े रोड की तरफ, गन्ने की फसल कट रही थी, गन्ने को काफी लगा हुआ था, गन्ने की फसल कट रही थी, तो ट्रैक्टर वगैरह के अंदर गन्ना लाद के ले जाते थे। जब वो ट्रैक्टर वगैरह में लाद के ले जाते थे, पीछे से बच्चे उसमें से गन्ने घसीटते थे। सही, अब कबूल करो या ना करो, ये चोरी है, ये चोरी है। मैंने उनसे एक दरख्वास्त, मैंने कहा भाई एक काम कर लो, सिर्फ इतना सा काम कर लो, अहले बैत के मानने वाले किसी घर का बच्चा ये चोरी ना करे, ये ना करे। अच्छा क्या फायदा होगा? एक फायदा होगा, अगर कोई बच्चा निकाले सामने वाला समझ जाए अली का मानने वाला नहीं है, बस छोटे छोटे से काम चाहिए जिससे दीन फैलता है। बड़े बड़े कामों से पता कि क्या होगा, आपके छोटे छोटे कामों से दीन फैलता है। मेरे जैसा आदमी क्या कर लेगा, कितनी तकलीफें कर लेगा। असा आप लोग जो यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, पहले से अहले बैत के मानने वाले, मैं कौन सा दीन फैला सकता हूँ? मैं नहीं दीन फैला सकता, मैं सिर्फ आपसे कह सकता हूँ कि आप अपने किरदार के जरिए से दीन फैलाते हैं। मैं पास दीन फैलाऊंगा, आप दीन फैलाएंगे, थोड़ा सा अपने आपको बेहतर कर दीजिए, छोटी छोटी चीजों को बेहतर करते चले जाइए, और आप खुद ब खुद अहले बैत की तासीर को देखेंगे। उनके नाम में असर है, उनकी एक एक बात में असर है। एक आखिरी बात, बस एक एक दो जुमले में और आराम से करना डांस करो, आपकी जहन को तमाम करो, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा इस्लामाबाद में था, एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा कि मैंने एक अजीब तजुर्बा किया, पहले पाकिस्तान से बाहर एक ऐसे मुल्क में था जहाँ अहले बैत के मानने वाले नहीं थे, बाहर मुखालिफीन कौन रहता था, इसके साथ मुश्किल पेश आती थी, ये पैगाम सुना नहीं सकता था, सुना तो लोग गिरफ्त कर लेते। कहने लगा मैंने एक सादा सा काम किया, मैं दुआएं सीख लेता था अहले बैत की, अरबी, अच्छी अरबी, उनकी अरबी बहुत अच्छी होती, दुआएं खुतबे, कहने लगा वो मैं याद कर लेता था और इन अरब के साथ बैठकर वो सुनाता था। तो इमाम के सहीफे में एक दुआ है, दुरूद भेजेगा उनके नाम पर, एक दुआ है, बहुत अच्छी दुआ, मुफातिम जनान मिल गया। कहने लगा मैंने वो दुआ सीख ली, उस दुआ के शुरू में कह पा तू का वाहन आना है, खुदा मैं तुझे कैसे पुकारूं जबकि मैं ऐसा हूं जैसे मैं जानता हूं, और क्यों ना पुकारूं क्योंकि तू बख्शने वाला है, तू हर एक को बख्श देता है, बहुत पतीस दुआ है, उसको देखिए कभी मौका मिला। क्या वो मैंने दुआ सीख ली, और दुआ सीखने के बाद एक दफा कहीं बैठा हुआ था किसी मिस्री के साथ, तो उसका अकीदा इस मामले में इंतहा खराब मुहालिकीन में से था। क्या लगा पर बैठे बैठे मैंने उसको वो दुआ सुना दी, बहुत खुश हुआ, क्या ये दुआ बहुत ज़बरदस्त दुआ है, किसकी दुआ है? चाहिए डर गया कि अगर मैंने चौथे इमाम का नाम लिया तो मुझे करबला भी बतानी पड़ जाएगी, उनकी ज़िंदगी बतानी पड़ेगी, तो इसने कह दिया, कहने लगा कि ये हज़रत अली की दुआ है, कहा हज़रत अली की दुआ है, उसने कहा ठीक है। मिस्री ने सुना, क्या लगा अच्छा हज़रत अली की दुआ है, बहुत अच्छी दुआ है, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। दो तीन दिन के बाद वो मिस्री मिला इस आदमी को, देखा कहना तो बहुत बड़ा झूठा है, तो बहुत झूठ बोलता है, इसने का मामला खराब हो रहा है, अगर ये इस तरह कहेगा झूठा है झूठा है तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा मैं चुप हो जाऊँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ, तुम्हारे पास बात करूँगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसके पास तनहाई में गया, कहना मैंने तुझे दुआ सिखाई और तू मुझे झूठा कह रहा है, क्या दुआ बुरी है? कहना नहीं, दुआ बहुत अच्छी है, तू झूठा है। भाई झूठा क्यों? कहने लगा कि मुझे दुआ बहुत अच्छी लगी, मैंने दुआ पढ़ते पढ़ते सो गया, मिस्री बता रहा हूँ। कहने लगा मैं दुआ पढ़ते पढ़ते सो गया, मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे मैं किसी रास्ते के किनारे बैठा हुआ हूँ और ये दुआ पढ़ रहा हूँ, दो नकाब लगाए हुए सवार मेरे सामने आए, उनमें से एक ने पूछा कि जो तू दुआ पढ़ रहा है किसकी दुआ है? कहने लगा कि हजरत अली की दुआ है। तो वो जो सवार तशरीफ लाए कहा ये अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ हैं लेकिन दुआ इनकी नहीं है, दुआ मेरी है, मैं अली इब्ने हुसैन दूर भेजा उनके नाम पर। दुरूद भेजने में बुखल न दिखाएं, बुलंद आवाज में दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। तो बताइए अब बुखल नहीं होगा, अब थक गए होंगे इस वजह से आपने उनके बारे में भेजा होगा, इसलिए मैंने ऐसी कहा। इमाम ने फरमाया अमीर मोमिन मेरे साथ हैं लेकिन दुआएं की नहीं है, दुआ मेरी है, नारी इब्ने हुसैन। अगर मैं और आप बस इतना कर लें अहले बैत की कोई एक हदीस सीख लें, जहां मौका मिले हदीस सुना लें, एक कलम सीख लें अहले मोमिन का, जहां मौका मिले सिखा लें। मैं आपको मशवरे के तौर पर कहूँगा नहजुल बलागा में 400 से ज्यादा कलिमात फसाद हैं, 400 से ज्यादा कलिमात फसाद, छोटी छोटी बातें, एक एक जुमले की, दो दो जुमले की। आप मुझे खुद बताइए मेरे पास क्या मौका है कि मैं मसलन दूसरे भाइयों को जो हमारे पास नहीं आते उनको वो सुना सकूं? वो आएंगे ही नहीं, मैं नहीं सुना सकता, कौन सुना सकता है? आप सुना सकते हैं, क्या करें, सादा से काम करें, नहजुल बलागा खोलिए, उन कलिमात फसाद को देखिए, एक जुमला ले लें जो आपको पसंद आता हो, एक जुमला ले लें जो आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, एक महीने तक जो मिले उसको वो जुमला सुना लें। काश आप यही कर लें। एक हदीस लेना है अहले बैत की, हदीस बहुत छोटी छोटी भी है, तीन अल्फाज की, चार अल्फाज की, एक हदीस ले लें जहां मौका मिले दूसरों के दरमियान बैठे बैठे दूसरी बातें करने के बजाय एक हदीस सुना लें। आप अहले बैत के मुबल्लिग बन जाएंगे। आप अहले बैत एक हदीस मैं आपको सुना दूं आपकी समाज के खातिर। इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया दुरूद भेजेगा उनके नाम पर, दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आ जाए, तुम आखरत की परवाह करो, दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आ जाए, खुद से आ जाए। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर दुनिया के पीछे भागे ये कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम जलील हो जाओगे, तुम जलील हो जाओगे। इतना सा काम देखिए, मैंने आपको उर्दू में सिखा सुनाया, तुम आखरत की परवाह करो दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आ जाएगी, ये आप उर्दू में नहीं याद कर सकते? कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए याद करें? एक महीने में एक जुमला, एक महीने में भी ना करें, छह महीने में एक जुमला याद कर लें, ये तो कर सकते हैं। छह महीने के लिए एक जुमला याद कर लें, जहां बैठे छह महीने तक वो जुमला सुनाते रहे, क्या फायदा होगा इसका? अपने इमाम से कहिएगा मौला आपके चलते अमजद की तब्दील करता हूं, आपको बंदे हो जाएंगे, आपको जजा मिलेगी इसके ऊपर, आपकी नस्लों पर इमाम का साया आता लगाना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद आपको शुमार कर लेंगे अपने साथ चलने वालों का। और नाज कर रहा हूँ, हम नहीं कर सकते, ये आप लोग कर सकते, आप लोग पैगाम फैलाएंगे, अपनी जिंदगी बेहतरी लाइए, अपने आप को बेहतर लाइए। उसकी वजह क्या है? हम सब ने मिलाकर सैयदुल शुहदा के सामने जवाब दिया, हम सब लोग एक बात में डूबे हुए हैं, कल रोजे महशर होगा, खुदा की साया खल करेगा, वो साया बीबी सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे खल्क होगा। हम सब की ख्वाहिश होगी काश ऐसा हो जाए, उस दिन बीबी का साया नसीब हो जाए, ये हम सब की ख्वाहिश है। उस साये को हासिल करने के लिए छोटी छोटी सी जहमतें उठा, कल इंशाअल्लाह जब महशर में पहुंचे तो बीबी से कह सकें बीबी आपके नाम पर ये काम किया, छोटे छोटे से लेकर काम करते हैं और वो सब कुछ देखने वाले, सब इंसानों को अपनों तक पहुंचाने वाले। बहुत रिवायात है हमारे पास कि मौला हुसैन कभी किस जगह से गुजर रहे थे, वहां एक खातून ने अपनी बकरी जिबा की, इमाम की खातिर का वजह हो, इमाम की खातिर का वजह हो, इमाम ने कहा तुम मदीने आना हमारे पास, हम तुम्हें देंगे। मदीने वो औरत आई, इमाम ने 40,000 बकरियां दी, 40,000 जानवर दिए उसे। किसी ने कहा मौला उसने एक बकरी कुर्बान की थी, आप 40,000 दे रहे हैं, पर मैं उसने सब कुछ दिया था, हम सब कुछ नहीं दे रहे। इमाम की कौन की बहुत कुछ है, पर मैं उसको 40,000 दे रहे, एक के बंदे में 40,000, वो एहसान नहीं रखेंगे अपने सर पर। अगर आपने उनके नाम की खातिर उनकी फिक्र को फैलाने के लिए 10 मिनट भी वक्त लगाया, ऐसी मुसीबत में आपका साथ देंगे जब कोई आपका साथ नहीं देगा। हम लोगों ने अपने छोटे से तजुर्बों में ये चीजें बहुत देखी, बहुत देखी। मुझे 26 साल हो गए तालिबे इल्म बने हुए, इस 26 साल में 10 दफा देखा है किस तरह उनकी नुसरत आना। इस खातिर में आप सर्च करो और आप भी उनके चाहने वाले, आप अपनी मोहब्बत को रखने वाले, आप अपनी मोहब्बतों के साए उनकी तालीमात को हासिल कीजिए, उनके सम पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये दुनिया गुजर जाएगी, इमाम की तशरीफ आवरी होगी इंशाअल्लाह, फिर इमाम की तशरीफ आवरी होगी सारी दुनिया किसी और तरह से चलेगी। खुदा इंशाअल्लाह मुझे और आपको इमाम की नुसरत का दिन देखना नसीब करें। अल्लाह तआला से दुआ करते हैं परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उनकी नूरानियत का वास्ता, इस कलील सी इबादत को हमसे कबूल फरमा। पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उनकी नूरानियत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें और हमारी नस्लों को अहले बैत के बेहतरीन चाहने वालों में करार फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उनके चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनके बीमार भी हैं, कुछ बेरोजगार होंगे, कुछ मुश्किलात में हैं, कुछ फर्ज के बारे में हैं, तो जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अहले बैत की मोहब्बत के वास्ते में ऐ पाक परवरदिगार उनके नाम के सदक़े में इनकी सारी मुश्किलात को बरतरफ फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमारे पर उम्मीद तेरी रहमत की मुंतजर है, हमारे और तमाम हाजरीन के पर उम्मीद को बेहतर मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम गुनाह सगीर और कबीरा से मग़फ़िरत नसीब फरमा, शफ़ात अहले बैत से सरफराज फरमा, हमें और उन सब को अहले बैत के हमराह महशूर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जो लोग इंसानियत के अंदर शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मक़ामात पर, दुनिया के अंदर अहले बैत के चाहने वाले